नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 981,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
After a detailed assessment of the evolving
परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
As projected earlier.
उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर
मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
Q4 at 6.8%।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22,00,000 चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के रांची से मैं महविश रहमान।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शन कार्यों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।